तकफीरी आतंकवाद।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने आपको सलफीवाद और उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया था। उसके बाद हमने भारतीय उपमहाद्वीप से मिस्र की ओर सलफीवाद के विस्तार पर चर्चा की। मिस्र इस्लामी जगत में सलफीवाद का एक ध्रुव समझा जाता है। अलबत्ता मिस्र में सलफीवाद का अस्तित्व में आना उस धारणा से पूर्ण रूप से भिन्न है जो आजकल आम जनमत के स्तर पर आतंकवाद और तकफीरी विचारधाराओं के दृष्टिगत सलफीवाद से ली गई है। मिस्र के बुद्धिजीवियों ने इस्लामी देशों में उत्पन्न संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस्लामी शिक्षाओं और उसके मूल्यों की ओर पलटने का सुझाव दिया। ये इस अर्थ में है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन और पतन का कारण धार्मिक शिक्षाओं से उनका मुंह मोड़ लेना है और इसीलिए आवश्यक ये है कि मुसलमान एक बार फिर अपने अतीत पर दृष्टि डालें और अपने धार्मिक मूल्यों को पुनः जीवित करें। दूसरे शब्दों में मिस्र में सलफीवाद रूढ़िवाद और अतिवाद के अर्थ में नहीं था, बल्कि मुसलमानों की असली पहचान और वर्तमान स्थिति से लाभ उठाने पर आग्रह के अर्थ में था।
इस प्रकार से यदि मिस्र में इस्लामवाद की शैली को सलफीवाद का नाम दिया भी जाए, तब भी स्पष्ट रूप से सलफीवाद की आस्था वहां भी तकफीरी सलफीवाद से मूल रूप से भिन्न है। इस विचारधारा के अग्रणी ईरानी बुद्धिजीवी सैयद जमालुद्दीन असदाबादी हैं। सैयद जमालुद्दीन असदाबादी इस्लामी जगत में धर्मों को एकजुट करने और धर्मों के मध्य एकता पैदा करने वाले आंदोलन के अग्रणी रहे हैं। वे इस प्रकार धार्मिक विचारधारा में सुधार करने में भी अग्रणी रहे हैं और उन्होंने इस्लामी जगत में एकता और एकजुटता के लिए भरसक प्रयास किए। वे न तो मिस्र में जन्मे थे और न ही उन्होंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की, मगर उस 9 वर्ष के दौरान जो उन्होंने अल अजहर विश्वविद्यालय में शिक्षा दी, धार्मिक सुधार के विचार का आधार रखा। मिस्र के एक मुफ्ती मोहम्मद अब्दो सैयद जमालुद्दीन असदाबादी के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। मोहम्मद अब्दो ने वर्षों की गतिविधियों के दौरान मिस्री जनता के सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किया और इस्लामी जगत में एक सुधारक और धर्मों को एकजुट करने वाले नेता के रूप में उभर कर सामने आए। पिछले कार्यक्रम में हमने मोहम्मद अब्दो के विचारों के बारे में चर्चा की थी। इस कार्यक्रम में हम मोहम्मद अब्दो के प्रसिद्ध शिष्य रशीद रजा के विचारों से अवगत होंगे।
रशीद रजा मूल रूप से सीरियाई थे, किंतु शैक्षिक प्रशिक्षण मिस्र में हुआ। सैयद जमालुद्दीन असदाबादी और मोहम्मद अब्दो के सुधारवादी और क्रांतिकारी विचारों ने उन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। रशीद रजा मिस्री बुद्धिजीवियों में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत और इस्लामी सरकार के बारे में दृष्टिकोण पेश किया था। उन्होंने अल खलीफा वल इमामतुल उज़्मा नामक पुस्तक में इस पर विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार वर्तमान समय में खिलाफत को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उसकी प्रवृत्ति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। ये पुस्तक यद्यपि ऐसी खिलाफत का चित्रण पेश करती है जिसका होना अधिक संभव नहीं है, किंतु अपने सटीक अर्थ में ध्यान योग्य है। ध्यान योग्य बिंदु यह है कि वे खिलाफत के प्राचीन दृष्टिकोणों को, जिसमें इसे स्थायी, सामान्य और अत्याचारी बताया गया, छोड़कर परिषद और जनता के दृष्टिकोणों को बहुत अधिक महत्व देते हैं।
रशीद रजा के दृष्टिकोणों को जो चीज प्रचलित सलफीवाद से अलग करती है वह यह वास्तविकता है कि सरकार का प्रमुख या खलीफा समस्त मुसलमानों का नेता होगा। इसमें सुन्नी धर्म के चारों पंथ, 12 इमामों के मानने वाले शिया, जैदी, अबाजी इत्यादि सभी शामिल होंगे। वे इसी प्रकार अंतरों को समाप्त करने और आस्थाओं को जबरदस्ती एक समान करने के प्रयास में नहीं थे, बल्कि कई प्रकार की आस्थाओं को राय की स्वाधीनता का प्रदर्शन मानते हैं। रशीद रजा के विचार विभिन्न और अलग अलग हैं। रशीद रजा के कुछ विचार उन्हें वहाबी सल्फीवाद से निकट करते हैं, जबकि उनके कुछ सुधारवादी और मध्य मार्गी विचार उनको उनके गुरु मोहम्मद अब्दो से निकट करते हैं। वे अपनी आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं में प्रचलित सल्फीवाद से निकट होते हैं और धर्मों के मध्य मतभेद को बड़ा चढ़ाकर मगर शत्रुतापूर्ण ढंग से पेश करते हैं।
यही कारण है कि कुछ लोगों ने सैयद जमालुद्दीन असदाबादी और उनके शिष्य मोहम्मद अब्दो के विचारों को इस्लामवाद और नवीनवाद की संज्ञा दी और मोहम्मद अब्दो के शिष्य रशीद रजा के विचारों को पारंपरिक इस्लामवाद बताया। ये कहा जा सकता है कि रशीद रजा वो शिष्य हैं जो अपने गुरु अर्थात अब्दो की तुलना में अधिक परंपरावादी हैं। वो एक धड़ा जो रशीद रजा के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ इख्वानुल मुस्लिमीन या ब्रदरहुड्स था। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन आंदोलन 1928 में हसन बन्ना के नेतृत्व में आरंभ हुआ। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन एक ओर तो रशीद रजा के सलफीवादी विचारों से संपन्न हैं और दूसरी ओर वे सैयद जमालुद्दीन असदाबादी की साम्राज्यवाद विरोधी तथा क्रांतिकारी शैली को जीवित करने के प्रयास में हैं।
इख्वानुल मुस्लिमीन के अस्तित्व में आने के उद्देश्य को उस समय इस्लामी जगत में छाए माहौल और स्थिति में तलाश करना चाहिए। हसन अलबन्ना के अनुसार इस काल में एक और मिस्र में मौजूद पार्टियों में पूर्ण रूप से लिबरल व राष्ट्रवादी विचारधाराएं पाई जाती थी और दूसरी ओर तुर्की में कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क के धर्म विरोधी रुझान मिस्र के बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों पर छाए हुए थे। इन परिस्थितियों में मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन ने अपनी गतिविधियां आरंभ की। इस आंदोलन की विशेषता इसका फैलाव व विस्तार है, इस प्रकार से कि इस विचारधारा ने समस्त इस्लामी देशों में बहुत ही अधिक प्रभाव डाला और बहुत से इस्लामी देशों में इसकी गतिविधियाँ आरम्भ हो गई। अलबत्ता विभिन्न देशों में इख्वानुल मुस्लिमीन की गतिविधियां तथा प्रवृत्ति एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। जिस चीज ने इख्वानुल मुस्लिमीन आंदोलन के विस्तार में तीव्रता प्रदान की वह अरबों और जायोनी शासन के मध्य झड़पें थी। यद्यपि इसराइल के विस्तारवाद के सामने इस्लामी देश बुरी तरह विफल हो चुके थे, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन आंदोलन का विकास और प्रभाव भी बहुत अधिक फैला। यही कारण है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के विस्तार को 1967 में अरब सेनाओं की भारी पराजय के बाद, जो अरब राष्ट्रवाद के नारे से इसराइल से युद्ध करने गई, देखा जा सकता है। इख्वानुल मुस्लिमीन ने अरब इसराइल युद्ध को मुसलमानों और यहूदियों के मध्य युद्ध की संज्ञा दी और अरबों की पराजय का कारण इस्लाम से दूरी बताया गया।
इख्वानुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता गजाली इसराइल अरब युद्ध में अरबों की पराजय के कारण बयान करते हुए कहते हैं कि इसराइली अपने शासन को यहूदी गणतंत्र या यहूदी सोशलिस्ट गठबंधन का नाम देने में सफल रहे, जबकि उनके पड़ोसी अरब देशों ने सत्तासीन परिवार के नाम पर हाशमी जॉर्डन या सऊदी अरब रख लिया, किंतु उन्होंने इसराइल नाम रखा जो धर्म और उसकी विरासत से उनके संबंध का प्रतीक है और पवित्र मूल्यों के सम्मान का चिन्ह है। इख्वानुल मुस्लिमीन के सलफीवाद की प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति है, न कि सांप्रदायिकतावाद और मुस्लिम विरोधी है। इख्वानुल मुस्लिमीन के विचारों के स्तंभ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सिद्धांत, इस्लाम स्वयं में एक संपूर्ण व्यवस्था है और मनुष्य के पैदा होने से उसकी मृत्यु तक के लिए उसके पास कार्यक्रम है।
दूसरा सिद्धांत, इस्लाम दो स्रोतों से प्राप्त हुआ है और उसी पर खड़ा है, एक कुरान और दूसरे पैगंबर इस्लाम का आचरण और हदीस है। तीसरा सिद्धांत, इस्लाम समस्त समय और कालों के लिए अनुकूल है। इख्वानुल मुस्लिमीन के यह सिद्धांत पूर्ण रूप से वहाबी सल्फीवाद व रूढ़िवाद से अलग हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण धर्म के स्रोत के रूप में सलफ या पूर्वजों को केंद्र नहीं मानते और उनके अनुसार समय और काल का प्रभाव और हस्तक्षेप रहता है।
इख्वानुल मुस्लिमीन अन्य इस्लामी संप्रदायों को अपना शत्रु नहीं समझते, बल्कि साम्राज्यवादियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन ने यद्यपि हसन अलबन्ना के नेतृत्व काल में सुधारवादी और शांतिपूर्ण शैली अपनाए रखी, किंतु उनके मारे जाने के बाद यह आंदोलन सैयद कुतुब के काल में अपने क्रांतिकारी रुख पर आ गया। البتہ اخوان المسلمین نے اپنی راجنیتک گتیویدھیوں کے کال میں وشیش کر انور سادات کی ہتیا کے بعد ستاسین ویوستھا کے پریپریکش میں پرتبندھوں اور اپنے کچھ نیتاؤں کی گرفتاری کے باوجود اپنی راجنیتک گتیویدھیوں کو جاری رکھنے کا پریاس کیا۔ 11 فروری ورش 2011 کی کرانتی اخوان المسلمین کے لیے بہت ہی اپرتیاشت تھی۔ مصر یوا حسنی مبارک کی تانہ شاہی سرکار کا تختہ الٹنے کے لیے اخوان المسلمین سے بہت آگے نکل گئے۔ کھیت کی بات یہ ہے کہ 11 فروری کی کرانتی کے بعد پراپت ہونے والی اپلبدھیاں اس راجنیتک آندولن کے سنستھاپکوں کے وچاروں سے بہت دور تھیں۔
انہوں نے زائنی شاسن اور سعودی عرب میں ستاسین وہابیوں کے ساتھ کسی سیما کا ریکھانکن نہیں کیا۔ اس کے وپریت انہوں نے زائنی شاسن اور آتنکی وہابیوں کے ساتھ میتری پورن سمبندوں کی گھوشنا کر دی۔ راشٹرپتی چناؤ میں وجے ہونے کے بعد محمد مرسی نے تیل اویو میں اپنے زائنی سمکش کو پریم اور مترتا کا سندیش بھیجا۔ محمد مرسی نے اپنی پہلی ودیش یاترا کے لیے سعودی عرب کا چین کیا اور اس یاترا میں شاہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ یہ ایسی ستی میں ہے کہ زائنی شاسن اور آل سعود اخوان المسلمین کے دو پراچین شترو تھے اور انہوں نے حسنی مبارک کی سرکار کو بچانے کے لیے کسی بھی پرکار کے پریاس سے سنکوچ نہیں کیا۔ انہوں نے 11 فروری 2011 کی کرانتی کے بعد بھی مصری یواؤں کے پریاسوں کو وفل بنانے اور اسے دیکھ بھرمت کرنے کا بھرسک پریاس کیا۔ محمد مرسی اور اخوان المسلمین نے انہی لوگوں سے نقصان اٹھایا جن کی اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔
زینی شاسن اور آل سعود نے مصری جنتا کی کرانتی کو وفل بنانے کے لیے مصری سینکوں اور دھرم ویرودھیوں کا ہر پرکار کا وتیہ راجنیتک و پرچارک سمرتھن کیا اور انہیں اس میں سفلتا بھی ملی۔ 1 سال کے بعد محمد مرسی کو ستا سے ہٹا دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی اخوان المسلمین کے درجنوں ورشٹ ادھیکاریوں اور کارکرتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اخوان المسلمین کو ایک آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا گیا اور اس کی راجنیتک گتیویدھیوں کو پرتبندھت کر دیا گیا۔ اخوان المسلمین نے بغیر سوچے سمجھے فیصلوں اور مصری جنتا کی سمسیاؤں کا صحیح سمے پر اچت سمادھان نہ کر کے مصری یواؤں کی اتھاہ محنت کی کرانتی اور راجنیتک انوبھووں و اپلبدھوں کو برباد کر دیا۔ شروتاؤ، اگلے کارکرم میں سعودی عرب کے وہابیوں پر چرچا کریں گے، سننا نہ بھولیے گا۔